मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 22 मई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान मित्र का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्र का नाम है विकास विवेक जो मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं सरकार बनाने की प्रक्रिया पर कुछ आप लोगों से बातें करना चाहूंगा और ये बात हम लोग अभी जो वर्तमान में स्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं उसी के संदर्भ में करेंगे। लेकिन आइए पहले थोड़ी सी दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा और हो सकता है कि आपका परिचय इस शब्द से पहले से ही हो और वो है हुआवेई। हुआवेई, मैं इससे आपका परिचय क्यों करा रहा हूं? अगर आप जो प्रीवियस पेपर्स हैं प्री एग्जामिनेशन के उठा करके देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं और उसमें दिया ये होता है कि समाचार पत्रों में चर्चित इस शब्द का आशय क्या है या इस शब्द का संबंध किससे है। तो यहां मैं कह रहा हूं हुआवेई। आपको ध्यान होगा कि यह शब्द आज ही नहीं पिछले कुछ समय से अखबारों में आ रहा है, लेकिन उस समय मैंने हालांकि मेरा ध्यान गया था लेकिन मैंने आप लोगों के सामने इस शब्द को रखना ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा कि अगर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा तब शायद एग्जामिनेशन के लिए हम इसे इंपॉर्टेंट मानेंगे, अदरवाइज तो फिर शब्द आते रहते हैं। अब मुझे लगता है कि यह इंपॉर्टेंट हो गया है। मुझे ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने बकायदे आज इस पर अपना एडिटोरियल लिखा है। इसका मतलब है कि यह महत्वपूर्ण हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर किसी पर एडिटोरियल न लिखा जाए तो महत्वपूर्ण नहीं होगा। अगर एडिटोरियल नहीं लिखा जाता तब भी मैं इसे महत्वपूर्ण मान चुका था कल से ही, और उसका कारण था इस पर अमेरिकी सरकार जो कदम उठाने जा रही है। तो आइए हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली ये जो हुआवेई है ये चीन की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, चीन की, चाइना की मल्टीनेशनल कंपनी है और यह दुनिया की दूसरी ऐसी बड़ी कंपनी है जो दूर संचार नेटवर्क के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है और हैंडसेट बनाती है, मोबाइल के हैंडसेट। दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी, इसका नाम है हुआवेई। ठीक, अब यह चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए आए कि अमेरिका ने इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए, हालांकि अभी उसमें कुछ दिनों की छूट दी है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। थोड़ा सा हम देख लेते कि ऐसा क्या हो जाता है यार कि अमेरिका प्रतिबंध लगाता रहता है, अब इस पर लगा दिया, इससे पहले ईरान पर लगा दिया। दरअसल जो अमेरिका का जो डिफेंस है उनका यह मानना है कि अब अमेरिका और चीन के पहले तो अच्छे संबंध थे लेकिन अब आप देख रहे हैं कि थोड़े से टकराव वाली स्थितियां हो गई हैं, ट्रेड वार शुरू हो गया है। तो उनको ये लग रहा है कि ये जो कंपनी है इसका जो उपकरण नेटवर्क है तो अमेरिका की बहुत सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस ये चाइना की एजेंसियों को दे सकते हैं, यानी कि अमेरिका के लिए, अमेरिका के विरोध में वो चीन के लिए अगर अप्रत्यक्ष रूप से हम कहें तो जासूसी का काम कर सकते हैं। देखिए, डिफेंस का मामला तो बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, तो अमेरिका ने पहले से ही प्रिकॉशन संबंधी कदम उठा लिए हैं। दूसरा उसका यह भी कहना है कि अगर अमेरिका और चीन के बीच अभी जो ट्रेड वार चल रहा है ये बहुत आगे बढ़ता रहा तो हो सकता है कि जो चीन है वो जानबूझकर नेटवर्क को बाधित कर दे, और अगर वो नेटवर्क को बाधित करेगा तो आप सोच करके देखिए कि कल्पना कीजिए कि भारत में अगर कंप्यूटर चलना बंद हो जाए तो आज क्या स्थिति होगी। तो अमेरिका शुरू से ही सतर्कता बरतते हुए उसने यह कदम उठाया है। लेकिन चलिए, हमारे लिए दो पॉइंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है हुआवेई, जो चीन की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो दूर संचार नेटवर्क उपकरण प्रदान करती है और हैंडसेट बनाती है। मित्रों, दूसरी जो खबर है वो इलेक्शन कमीशन को लेकर के है और आपने रेडियो न्यूज में सुना है कि इलेक्शन कमीशन, इसकी चर्चा मैंने कल भी की थी, और वो ये है कि तीन कमिश्नर होते हैं, बहुमत की दृष्टि से निर्णय लिए जाते हैं। लवासा साहब ने उसको लेकर के कुछ आपत्तियां उठाई थी, तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि ये जो असहमति होती है या जो अल्पमत होता है, इनके जो विचार होते हैं उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल वाले नहीं होते हैं। हाँ, उनका वे रिकॉर्ड का हिस्सा जरूर बन सकते हैं और बनते हैं। ये बात कहकर उन्होंने इस विवाद को यहां समाप्त कर दिया है। आज के करंट कंटेंट के तहत बेल्ट रोड इनिशिएटिव का दूसरा चरण, ये आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है। मुझे याद आ रहा है कि जब इसके बारे में मैंने बात की थी इंडियन एक्सप्रेस में, ये एडिटोरियल कमेंट के रूप में छपा था, तब मित्रों मैंने आप सबसे वायदा किया था कि यह बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है और इसका हिंदी वर्जन मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो कुल मिलाकर के यह कि मैंने अपने उस वायदे को आज आप से पूरा किया है और आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो यह है कि अभी जो इसी को लेकर के जो दूसरी मीटिंग बीजिंग में हुई, सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत नहीं गया, भारत ने इसका बायकॉट किया हुआ है, उसके कारण आप जानते हैं। तो इस मीटिंग में जब दूसरे देशों ने दबाव डाला और चीन के जो इस प्रयास के बारे में उन्होंने आशंकाएं व्यक्त की, तो चीन ने कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी कि उनकी जो आशंकाएं हैं वो निराधार हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आशंकाएं थी, चीन ने क्या क्लियर किया है, ये बकायदे इसमें दिया हुआ है। इसका जो लास्ट पोर्शन है छोटा सा, उसमें यह सजेशन दिया गया है कि भारत को अब इसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। अब नई सरकार आने वाली है और इसको नई दृष्टि से बहुत जरूरी है कि वो सोचे, क्योंकि ये मामला केवल जल यातायात और रोड का भी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्रों में, दूरसंचार नेटवर्क के क्षेत्रों में भी ये बहुत काम में आने वाला है। तो कोई ऐसा रास्ता तलाश किया जाए कि भारत इससे लाभ उठा सके, ये उसका सेकेंड पार्ट है। और मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके उत्तर देने में ये जो करंट कंटेंट है काफी मददगार साबित हो सकता है। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, सरकार बनाने की प्रक्रिया। देखिए, चुनाव हो चुके हैं, एग्जिट पोल ने पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के ब्लड प्रेशर को हाई कर दिया है। पूरा देश चकित है क्या होने वाला, ऐसा नहीं कि एग्जिट पोल से वो संतुष्ट हो गया है, उसकी भी आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं हो रही हैं, जवाब में और दूसरे तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं। खैर, अब वो तो कल क्लाउड साफ हो जाएगा, बादल छट जाएंगे। अब देखिए, जब हम सरकार बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं तो कुछ चीजें आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए और इससे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी तैयारी कर सकेंगे। संविधान में तो कुछ भी नहीं लिखा, संविधान में तो सीधे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देंगे। ठीक है, चलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को किनारे करते हैं, हम व्यावहारिक पक्ष पर आते हैं, वो आप बुक्स में पढ़ लेंगे। अब हमारे पास वर्तमान में तीन समूह दिखाई दे रहे हैं, तीन समूह। एक एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है और उसमें दूसरी बहुत सी पार्टियां शामिल हैं, राइट। ये जो एनडीए है, जिसे हम अभी एनडीए कह रहे हैं, याद रखिए कि ये दो तरह के अलायंस होते हैं। ये है प्री पोल अलायंस। प्री पोल अलायंस कहने का मतलब है कि चुनाव से पहले ही ये सब आपस में इकट्ठे हो गए थे और सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। यानी कि जहां मान लीजिए कि अकाली दल और बीजेपी के बीच में अलायंस है, तो सीधी सी बात है कि जहां अकाली दल अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी वहां बीजेपी नहीं खड़ा करेगी, बीजेपी बल्कि अकाली दल को सपोर्ट करेगी, और वाइस वर्सा जहां बीजेपी खड़ा होगी वहां अकाली दल नहीं अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। ये प्री पोल अलायंस है। तो प्री पोल अलायंस में हम देखते हैं कि एक हमारे पास एनडीए का ग्रुप है, दूसरा यूपीए का ग्रुप है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, है ना, जिसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरा ग्रुप है जिसे अभी चैनल वाले एक तरह से निर्गुट पक्ष कहने लगे हैं, जो इन दोनों अलायंस में शामिल नहीं है, जैसे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, या उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी और समता पार्टी है, आपके हैदराबाद, आपके आंध्र प्रदेश की पार्टीज हैं, और आपके बकायदे तेलंगाना की पार्टीज, ये किसी में शामिल नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। अब जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो पहली तो बात है कि वो एनडीए के पक्ष में आते हैं या यूपीए के पक्ष में आते हैं। दूसरी बात है कि जब रिजल्ट आते हैं तो इन लोगों को स्पष्ट बहुमत मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। अगर स्पष्ट बहुमत मिल गया किसी भी अलायंस को तो सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, राष्ट्रपति सीधे सीधे उनके लीडर को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो संकट तो वहीं आता है। तब देखिए कि ये जो तीसरा गुट है, जिसे आप निर्गुट कह सकते हैं, इनके साथ ये जो दोनों अलायंस वाले ग्रुप हैं वो बात करेंगे, वो चाहेंगे कि ये हमें सपोर्ट दें। तो जिनको भी ये जो तीसरा गुट है सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उस सीमा तक की उनकी सदस्य संख्या 272 या उससे अधिक हो जाए वो फिर सरकार बना लेगा। राइट, अब ये जो सपोर्ट देने की बात होती है, देखिए ये दो तरह के होते हैं, क्योंकि ये सब शब्द अभी आएंगे तो आपके दिमाग में पहले से क्लियर होने चाहिए। एक सपोर्ट तो ये हो सकता है कि हम सरकार में शामिल होकर के सपोर्ट देंगे, यानी कि जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने होगा उसमें आप हमें भी मिनिस्टर बनाइए, यानी कि हम सरकार के हिस्से हो जाएंगे। दूसरा सपोर्ट ये होता है कि हम आउटसाइड सपोर्ट करेंगे, यानी कि हम आपको समर्थन तो दे रहे हैं लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हम हिस्से नहीं बनेंगे, हमें कोई पद नहीं चाहिए, बस हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब होता यह है कि देखिए जब आप सरकार में शामिल होकर के सपोर्ट देते हैं तो वो सपोर्ट ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि सरकार आपकी ही हो गई, आप फिर सरकार की आलोचना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सरकार की आलोचना करने का मतलब है आप अपनी खुद की आलोचना करें, क्योंकि आप सरकार के हिस्से हैं। लेकिन अगर आप आउटसाइड सपोर्ट की बात करते हैं तो फिर आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, दायित्व तो आपके पास कुछ है नहीं, और जिस दिन भी आप आंख दिखा देंगे और कह देंगे कि हम सपोर्ट नहीं दे रहे हैं उस दिन सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस ने ऐसा कई बार किया है, आउटसाइड सपोर्ट दिया और इसके बाद किसी भी दिन ये घोषणा कर दी कि अब हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, और सरकार के सामने इसके सिवाय फिर कोई चारा नहीं रह जाता कि वो इस्तीफा दे, सरकार गिर जाती है। तो मित्रों अब स्थिति क्या होगी, कल चुनाव परिणामों के बारे में क्लियर हो जाएगी, लेकिन एक बात के प्रति मैं आपको अभी से सतर्क करना चाहूंगा, और वो बात यह है कि चुनाव आने के बाद जिस तरीके से सरकार के बनने की प्रक्रियाएं शुरू होंगी उसे आप बहुत थोड़ी सी माइन्यूटली, यानी कि सूक्ष्मता के साथ और गहराई के साथ, सतर्कता के साथ वाच कीजिएगा। उस दौर में आप पाएंगे कि इन सब को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे जाएंगे। जैसे आज ही मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं दैनिक जागरण का, कि राष्ट्रपति के पास है स्वविवेक का अधिकार, एनके सिंह जी का है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। क्योंकि देखिए अब जो सिविल सर्विस का पैटर्न हो रहा है एग्जामिनेशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन से सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे कि राष्ट्रपति के अधिकार क्या होते हैं, नहीं। अब जो वर्तमान स्थितियां हैं, वर्तमान स्थितियां जो चुनौतियां पैदा करती हैं या वर्तमान स्थितियों में जो समस्याएं जन्म लेती हैं उनके निराकरण को आधार बनाकर के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और आपसे उसके आंसर पूछे जाते हैं, आपसे आपके अपने विचार जाने जाते हैं। ये सब आप कैसे जानेंगे? नो डाउट कि आर्टिकल्स पढ़ करके जान लेंगे, एडिटोरियल कमेंट सुन करके जान लेंगे, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी होता है कि यदि आपको अवसर मिल रहा है तो आप घटनाओं को ऑब्जर्व कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उससे आपके अंदर एक अलग ही लेवल की मैच्योरिटी आ जाती है। तो मित्रों देखते हैं कि आगे क्या होता है और जिस तरह की स्थितियां आएंगी उस तरह से फिर हम लोग आगे इस विषय पर बात करेंगे। न्यूज़पेपर्स की कई क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं मित्रों, आप सब देख लीजिएगा। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: केशु भाई गुजरात से, शिवम मिश्रा जौनपुर उत्तर प्रदेश से, चंदन सिंह कुंवर, दुष्यंत कुमार, हेतराम प्रजापत और रवि कुमार भागलपुर से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।